ओके गाइस, माय नेम इज फिजान एंड आई एम अ टेक्नोलॉजी एंथुसियास्ट।
और मेरा नाम शहवार अहमद है और मैं एक लेजर साइंटिस्ट हूँ।
और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं टेकलॉग पॉडकास्ट नंबर 17। रोबोटिक्स की बात होती है बहुत ज़्यादा, और जर्मनी के अंदर खास तौर पे ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा बात की जाती है, और जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं वो रोबोटिक्स को इस सेंस में लेते हैं कि रोबो वॉर्स हो गई या रोबोटिक कॉम्पिटिशन, जैसे लाइन फॉलोइंग रोबोट्स। लेकिन एक रोबोट की आज हम आप लोग को एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे स्कॉलरशिप के ऊपर, और वो लोग जो स्विट्जरलैंड की स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनको वो क्या स्टेप्स हैं जो उनको पता होने चाहिए और वो क्या प्रोसीजर है। तो इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ काशिफ शहजाद होंगे, और काशिफ शहजाद जो हैं वो कंसल्टेंट हैं आईटी से और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के। सो वेलकम काशिफ।
अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू।
और काशिफ भाई, अब जो है ना थोड़ा सा पार्ट ये है कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम ये मिस कर गए, हम आपसे जो है ना आपके एक्सपीरियंस के बारे में जो है ना थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका किस तरह से एक्सपीरियंस है अभी तक, और अभी आप क्या कर रहे हैं करंटली।
मैं करंटली रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, जिस तरह फिजान ने अभी इंट्रोडक्शन में बताया, जॉब कर रहा हूँ जर्मनी में पिछले 5 साल से आफ्टर माई स्टडीज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। और एज अ सीनियर कंसल्टेंट मैं एक कंपनी में जर्मनी में जॉब कर रहा
हूँ। ज़बरदस्त। तो मतलब आपसे थोड़ा सा ना, आप यहाँ पे मैं एक सवाल करूँगा कि आपकी स्टोरी क्या है, स्टोरी से मतलब आपने किस तरह से स्टार्ट किया। आप मतलब अगर मैं पाकिस्तान से बात करूँ तो आपने क्या डिग्री की थी, और उसके बाद आपने क्या किया, और फिर ये स्विट्जरलैंड किस तरह आना हुआ।
जी, पाकिस्तान में मैंने यूटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर किया था, और बैचलर कंप्लीट करने के बाद कुछ अरसा मैं पाकिस्तान में ही टीचिंग के हवाले से जॉब करता रहा, और इस दौरान में मैं मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ को इन यूरोप और इन अमेरिका देखता रहा, जिसमें डिफरेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल फुल ब्राइट मेरे सामने थी, इसके अलावा यूरोप में बहुत सी स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं, बहुत से जर्मनी में डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स थे, स्विट्जरलैंड में थे, स्वीडन में बहुत से लोग जाते थे। तो इन सब को देखने के बाद मुझे एक दिन ये स्विट्जरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है, इकोल पॉलीटेक्निक फेडरल डू लुजान, ये फ्रेंच यूनिवर्सिटी है, इसको EPFL कहते हैं। तो इसकी एक नया प्रोग्राम, इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इस प्रोग्राम के दो जो पार्ट थे, जिसमें मेजर टेक्निकल साइड पे था रिलेटेड टू एनर्जी एंड पावर सिस्टम, और जो माइनर था वो मैनेजमेंट के साइड पे था। मैं आफ्टर बैचलर चूंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड पे या रिसर्च की तरफ नहीं जाना चाहता था, तो ये प्रोग्राम मुझे इसने काफ़ी क्लिक किया, क्योंकि इसमें काइंड ऑफ बोथ स्टडीज इंक्लूड थी, टेक्निकल साइड पे भी मैं पढ़ सकता था और इसके साथ साथ मैं मैनेजमेंट साइड पे भी यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज ले सकता था। तो EPFL में मैंने देन इस प्रोग्राम को चूज़ किया, एनर्जी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, और यहाँ से फिर मैंने अपना मास्टर कम्प्लीट किया।
ज़बरदस्त। तो मतलब जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको इस बात का पता होगा कि देखो, अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक एसेंशियल पार्ट है आपकी फील्ड का, जो आपकी एक प्रॉपर कैरियर गोल के साथ अटैच हो सकता है, जो कैरियर बन सकता है। हाँ फैजान, तुम कुछ ऐड करना चाह रहे थे यहाँ पर।
अब जब भी हम लोग बाहर जाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान में फाइनेंसिस का हमेशा से जो है वो इशू रहता है स्टूडेंट्स को, और सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है वो होता है स्कॉलरशिप लेने का। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, लोग कनाडा की स्कॉलरशिप लेने की कोशिश करते हैं, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका में लेने की कोशिश करते हैं, डार्ट स्कॉलरशिप जो है वो जर्मनी में लेने की कोशिश करते हैं। तो आपने स्विट्जरलैंड की स्कॉलरशिप का आपको किस तरीके से पता चला, और वो क्या मोटिवेशन थी कि जिसमें आपने सोचा कि मुझे स्विट्जरलैंड की स्कॉलरशिप जो है वो अप्लाई करनी चाहिए?
बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली यही परसीव किया जाता है कि स्विट्जरलैंड में एजुकेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और इसी वजह से हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जब उनके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं तो वो स्विट्जरलैंड को ऑल टुगेदर ड्रॉप कर देते हैं। हालांकि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्विट्जरलैंड में भी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं और इवन टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें ETH एंड EPFL जो ना सिर्फ कि यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, टॉप 50 में आती हैं। तो जब इस प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला तो डेफिनेटली मेरे सामने एक ही ऑप्शन थी कि अगर मैं किसी तरह पाकिस्तान में किसी इदारे से HEC या किसी और इदारे से स्कॉलरशिप हासिल कर सकता हूँ या मैं किसी इंटरनेशनल बॉडी से या यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप ले सकता हूँ तभी मैं इसी प्रोग्राम में पढ़ सकता हूँ। क्योंकि ये प्रोग्राम मुझे पहले दिन से बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जिस तरह अभी शेरी ने भी बात की कि इसमें टेक्निकल के साथ साथ मैनेजमेंट भी मिक्सअप थी और यही मेरा गोल था क्योंकि मैं मैनेजेरियल रोल्स में टेक्निकल कंपनीज में जॉब करना चाहता था। तो इस प्रोग्राम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो लकीली इस प्रोग्राम का एक अपना स्कॉलरशिप था जिसे हम नॉर्मली डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप कहते हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये इसी तरह स्टार्ट हुआ था कि जो भी जिसको भी वो इस प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं इट्स मीन कि उसका स्कॉलरशिप डिपार्टमेंटल लेवल पे सिक्योर हो जाता है। ये प्रोग्राम बेसिकली EPFL ने मिडल ईस्ट दुबई के साथ रसल अल हैमा की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके ये स्टार्ट किया था और उनका पर्पस ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो EPFL चूंकि एक बड़ा नाम है और उसके साथ उनकी कोलैबोरेशन बढ़े, वहाँ से स्टूडेंट्स पढ़ें या वहाँ के प्रोफेसर इवन कुछ अरसा रसल अल हैमा दुबई UAE में आए वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। और जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम के तहत स्विट्जरलैंड में फॉर एग्जांपल मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं वो बाद में एट सम पॉइंट वो दोबारा UAE में आए और वहाँ वो जॉब करें मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर में और वो उन स्टूडेंट्स की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकें। तो इस स्कॉलरशिप इस वजह से उन्होंने इस कोलैबोरेशन के तहत इस स्कॉलरशिप को लॉन्च किया था और ये रैक स्कॉलरशिप कहलाता था जो कि मास्टर इन एनर्जी मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी के प्रोग्राम के एडमिशन के साथ अटैच था।
सही, तो मैं एक इसी डिस्क्रिप्शन के साथ कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक यंग ग्रेजुएट हूँ और अब मैंने स्कॉलरशिप जो है वो सर्च करना स्टार्ट किया और मेरे सामने एक ऑप्शन आया स्विट्जरलैंड का, तो वो क्या स्टेप्स हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे सबसे पहले परसू करनी चाहिए? जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में DAT.DE के नाम से एक वेबसाइट है और उसके ऊपर जो है वो तमाम की तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लिस्टेड हैं और लोग जाते हैं उस पर अपनी एक्सपर्टीज़ डालते हैं, अपनी एजुकेशन डालते हैं और उनके पास एक लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती है जिसके ज़रिए वो अप्लाई करते थे। तो स्विट्जरलैंड की स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए क्या कोई इस तरह का प्रोसीजर है? नहीं है तो क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके जरिए है ली जा सकती है? उसके बाद के प्रोसीजर्स क्या हैं?
बिल्कुल, ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिएगा क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से जनरल स्कॉलरशिप्स हैं जो आप स्विट्जरलैंड में एजुकेशन के लिए उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें हासिल कर सकते हैं, और कुछ जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज एंड कुछ प्रोग्राम्स के साथ जो अटैच हैं इनके बारे में मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। सबसे पहले जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। ये बेसिकली जैसा कि नाम से ही वाजे है गवर्नमेंट स्विस गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है, वेरी कम्पेटिटिव और इसमें वर्ल्ड वाइड बहुत से लोग अप्लाई करते हैं। मेनली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स PhD के लिए आते हैं स्विट्जरलैंड में उनको इसका एक बड़ा पोर्शन यानी कि इन स्कॉलरशिप्स में जितना भी होता है वो उनको अवार्ड किया जाता है। कुछ इसमें उसे कहते हैं मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है। तो ये एक जनरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हमारे स्टूडेंट्स पाकिस्तान से मास्टर बैचलर के बाद मास्टर में अप्लाई किया है या मास्टर के बाद उन्होंने PhD में अप्लाई किया और अपना एडमिशन सिक्योर किया है तो वो इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली अगर वो स्विस की जो हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान में उनकी वेबसाइट पे जाएं तो आपको वो स्कॉलरशिप जस्ट वो लिखेंगे स्विस स्कॉलरशिप तो आपको मेनली यही स्कॉलरशिप नज़र आएगा और वो इस उस वहीं पे लिंक होगा जहां से वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वंस कि वो स्विस गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कॉलरशिप को अचीव कर लेते हैं तो कपल्ड विद योर एडमिशन in the master or in PhD in any university in Switzerland, तो वो easily Switzerland में अपनी education complete कर सकते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये बहुत attractive scholarship होता है। इसमें ना सिर्फ आप अपनी university fees, अपनी living cost और दूसरे आने जाने के traveling cost को cover करती है, बल्कि इसके अलावा भी क्योंकि मेरा तो experience है, तो students के बाद काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है और इसके लिए स्टूडेंट्स को डेफिनेटली जिनके अच्छे ग्रेड्स हैं, इन पर्टिकुलर जिनका रिसर्च में एक अच्छा बैकग्राउंड है आफ्टर बैचलर लेवल या इवन मास्टर के बाद, तो आई वुड एनकरेज कि उन्हें डेफिनेटली इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ स्विस यूनिवर्सिटीज मास्टर स्कॉलरशिप्स की तरफ।
अच्छा, थोड़ा सा ना मैं सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, मैं इसको थोड़ा सा ना समराइज करना चाहूंगा जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहली स्कॉलरशिप अगर स्विट्जरलैंड में आपने चाहिए तो वो मतलब टॉप टीयर स्कॉलरशिप है, स्विस एक्सेलेंसी स्कॉलरशिप,
स्विस गवर्नमेंट एक्सेलेंस स्कॉलरशिप,
बिल्कुल। और उसके लिए जो है ना आप स्विस एम्बेसी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको जो स्विस एम्बेसी पाकिस्तान है स्पेसिफिकली, आप उसको विजिट करके वहाँ से आपको मिल सकती है। बाकी अगर आपको वहाँ से ना भी मिल सके तो आप गूगल कर लें स्विस स्कॉलरशिप्स, उसमें आपको टॉप टीयर ये मिल जाएगी। और ये मेनली जो टारगेटेड है वो मास्टर्स और पीएचडीज के लिए। और जैसे कि हमारे गेस्ट ने बताया कि इसका काफ़ी अच्छा पोर्शन है जिसमें ट्रैवलिंग और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो अगर जो डॉक्यूमेंट्स की नीड्स है, किस तरह डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने, मेरे ख्याल में वो पूरी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई होगी, उससे रिलेटेड कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होंगे, तो वो आप काइंडली चेक करें। और उसके लिए फिर अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो एक फेसबुक का ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क्स, होपफुली वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जिसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया होगा। और अगर आपको वैसे ही कोई इन डिटेल क्वेश्चन पूछना है तो आप इस पॉडकास्ट के दौरान भी पूछ सकते हैं अभी।
Exactly.
तो आप कंटिन्यू करें, सॉरी।
बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा कि ना सिर्फ ये कि वो स्कॉलरशिप नेटवर्क के एक बड़े फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बल्कि अगर उन्होंने टारगेट किया है स्विट्जरलैंड को ही, तो वो स्विट्जरलैंड में भी पाकिस्तान कम्युनिटीज के फेसबुक ग्रुप्स हैं, तो वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको इंतहाई स्पेसिफिक और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उन लोगों से मिल जाएगी जो ऑलरेडी जिन्होंने स्कॉलरशिप को अचीव किया है, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इवन आपके साथ शेयर कर सकते हैं और आपके बहुत से क्वेश्चंस का आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और रिगार्डिंग दी कौन से क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चूंकि चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, मतलब मोटी मोटी चीज़ें तो वही हुई हैं, आपको रिसर्च प्रपोजल अच्छा सा बनाना है, अपनी सीवी अच्छी सी बनानी है और प्रोफेसर्स के रेफरेंस लेटर्स ऑफ कोर्स आपको चाहिए, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं वो चूंकि हर साल दो साल बाद थोड़ा बहुत अपडेट होते रहते हैं, तो वो आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे ईजीली अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद ये तो स्कॉलरशिप जो हमने स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात की, जो कि टारगेटेड होता है मेनली फॉर द पीएचडी स्टूडेंट्स या उन मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं या रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद जिस स्कॉलरशिप के थ्रू मैंने मास्टर किया, चूंकि ये एक रिसर्च प्रोग्राम नहीं था, तो इसको हम नाम देते हैं स्विस यूनिवर्सिटी मास्टर स्कॉलरशिप्स। ये हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ईपीएफएल के लिए ये डिफरेंट होगा ईटीएच का, और इसकी इन्फॉर्मेशन ईटीएच ज्यूरिख की वेबसाइट पे मिलेगी, ईपीएफएल से रिलेटेड वो ईपीएफएल की वेबसाइट पे आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ जनीवा है, यूनिवर्सिटी ऑफ लुजान है, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न है, ये सारी यहाँ पे यूरोप में और स्विट्जरलैंड में काफ़ी रिस्पेक्टफुल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, इन मास्टर स्कॉलरशिप्स में नॉट ओनली कि ये फुल फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं, बल्कि आपको कुछ लेस कम्पेटिटिव स्कॉलरशिप जिनमें पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स आते हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो इनकेस अगर आप फॉर एग्जाम्पल फुल फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो आप नहीं अचीव कर पाए, तो आप पार्शियल के लिए भी साइड बाय साइड अप्लाई कर सकते हैं, तो इन केस आपके लिए काफ़ी सहूलत हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं जो ईपीएफएल के हवाले से है जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, ये चूंकि मैंने जैसे कि पहले बताया, जब आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपका स्कॉलरशिप उसके साथ ही सिक्योर हो जाता है। तो इस मास्टर प्रोग्राम में ना सिर्फ ये कि जो स्टूडेंट्स एनर्जी या पावर से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं और करते रहते हैं कि इसका नाम है एनर्जी मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो क्या इसमें वही स्टूडेंट आए जिन्होंने बैचलर में पावर और एनर्जी के हवाले से बैचलर किया है, पढ़ा है? तो मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रीन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में आजकल काम हो रहा है या उसमें जो रिसर्च हो रही है, तो उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोगों की, इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है, जिसमें मैकेनिकल भी आ जाता है, केमिकल भी आ जाता है, इन्वायरमेंटल के स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं। और इवन इस प्रोग्राम जो के जिसका नाम मैस है या मास्टर इन एनर्जी मैनेजमेंट सस्टेनेबिलिटी, इसके करिकुलम में वो हर किस्म के स्टूडेंट्स को इन्वाइट करते हैं, जिनमें इवन इन्वायरमेंटल से रिलेटेड हो या नेचुरल साइंस के हवाले से आपने बैचलर में पढ़ा हो, या ऑफ कोर्स एनर्जी में तो आ जाएगा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी या इवन आर्किटेक्चरल। तो ये इन सारे बैकग्राउंड के हवाले से जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे साथ, जिस बैच में मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया था, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे और उन्हें पूरी अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में अपने बैकग्राउंड के हवाले से कोर्स को उठाएं और उसी उसी सीमत में, उसी डायरेक्शन में अपनी फर्दर एजुकेशन यानी कि मास्टर को कंप्लीट कर सकें। तो इस प्लेटफॉर्म पे मैं यही बात जो मैं बताना चाह रहा था कि जो फोकस जिस पे मेरा कहने का है वो ये है कि हमारे बैचलर स्टूडेंट्स नॉट ओनली फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या एनर्जी, बल्कि केमिकल के, मैकेनिकल के, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हवाले से या आर्किटेक्चर के हवाले से, अगर वो इस फील्ड में फर्दर एजुकेशन या मास्टर करना चाहें, तो मैं उन्हें इनक्रेज करूँगा कि वो डेफिनेटली इसको सर्च करें, इसके देखें कि वो उनको सूट करता है या नहीं, और इसमें डेफिनेटली अप्लाई करें।
ज़बरदस्त, काफ़ी डिटेल आंसर जो है वो आपने दिया। तो ये जो लुब्बे लुबाव है वो यही है कि बाकी तमाम फील्ड्स के लोग जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो पावर से ही रिलेटेड हो। और ये बात कर रहे हैं हम EPFL यूनिवर्सिटी की, जिससे काशिफ भाई ने जो है वो अपना मास्टर्स किया। तो काशिफ भाई, एक सवाल मैं पूछूँगा कि ये तो हो गया वो उन बच्चों के लिए जिन्होंने, जो हाई अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपने करियर के अंदर काफ़ी अच्छा जो है वो GPA वगैरह ली और काफ़ी पढ़ाई में अच्छे थे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकली काफ़ी साउंड होते हैं लेकिन वो थ्योरेटिकली इतने अच्छे नहीं होते, तो क्या उनके लिए भी ऑप्शंस इतने ही ओपन हैं जितने क्या बोलते हैं एक ब्राइट स्टूडेंट के लिए?
बिल्कुल, ऑप्शंस जिस तरह मैंने कहा कि मतलब जिस तरह US में है या इवन जर्मनी में है, तो मे बी ETH इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्विट्ज़रलैंड, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर एक स्टूडेंट जिसके जो टेक्निकली तो मतलब साउंड है उसे कहते हैं, लेकिन किसी वजह से उसके नंबर्स इतने अच्छे नहीं है बैचलर में, तो उसको ETH में एडमिशन ना मिल सके या EPFL में ना मिल सके। तो मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी नाम आपको बताए, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ लोजान, ये ज़्यादा मैनेजमेंट और नेचुरल साइंसेस की तरफ इसकी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न या जेनीवा। तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सिमिलर टू जर्मनी, जर्मनी में अगर आपको टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स या कोई किसी को एडमिशन अप्लाई करता है और नहीं मिलता, तो वो दूसरी ऑप्शंस को भी बिल्कुल कंसिडर करता है और ऐसा नहीं कि वो डिसअपॉइंटमेंट की कोई इसमें मतलब गुंजाइश नहीं है। सेकेंडली, जब हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं या फंडिंग की बात करते हैं, तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ फुल फंडेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कॉलरशिप हैं, ऑफकोर्स ये तो समझ में आता है कि उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आपने कम्पीट करना होता है इन स्कॉलरशिप्स के लिए, और जितना कोई अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप होता है डेफिनेटली फिर जैसे ही उसकी बात मतलब फैलती है तो बहुत सी एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाती है। मैं इवन चलते चलते ये बात बताऊं, जिस प्रोग्राम में मैं गया था वो स्टार्ट हुए, मेरा दूसरा बैच था, एक साल पहले वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, और मैं लकीली जब था उस वक्त आई थिंक स्कॉलरशिप ओवर जो एप्लीकेशंस थी अबव 1000 आई थी, लेकिन अब मुझे जो सुनने में आ रहा है इवन 7000, 8000, अबव 10000 तक जो एप्लीकेशंस हैं आती हैं, और वो स्टूडेंट्स कितने सेलेक्ट करते हैं, मेरे बैच में 12 स्टूडेंट्स थे। तो अराउंड लेस देन 15, अराउंड 15 यू कैन से. तो कंपटीशन इज डेफिनेटली होता है. लेकिन मैं साथ साथ जिस तरह फिजाना आपने क्वेश्चन किया, तो मैं ये बताऊंगा कि पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स की भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, डेफिनेटली वो उनमें कंपटीशन कम होता है. और जो थर्ड पॉइंट है, जर्मनी की तरह इवन स्विट्जरलैंड में भी बहुत से कुछ मतलब स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के हवाले से तो ऐसी एग्जाम्पल शायद कम मिले, लेकिन दूसरी नेशनैलिटीज़ के लोग हैं जो आते हैं और उसके बाद वो स्टूडेंट जॉब्स करते हैं और अपनी जस्ट लाइक इन जर्मनी अपनी एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं. क्योंकि स्विट्जरलैंड में भी जो यूनिवर्सिटीज़ के जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सेमेस्टर फीस जस्ट लाइक इन जर्मनी वो बहुत नॉमिनल होती हैं. जो असल एक्सपेंसिव जहां आपकी होती है वो लिविंग कॉस्ट होती है, क्योंकि वहां रहना और हर चीज़ रेंट फॉर एग्जांपल वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है. तो जस्ट लाइक इन जर्मनी अगर कोई मतलब बहुत मोटिवेटेड है कि नहीं मैंने स्विट्जरलैंड में इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पढ़ना है, मुझे एडमिशन मिल गया है, अब मुझे स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक मुझे नहीं मिल रहा, तो आई वुड से कि अगर वो थोड़े बहुत उसके पास सेविंग्स हैं वो कर सकता है मैनेज, तो वो चला जाए उधर जाके वो स्टूडेंट जॉब्स भी कर सकता है. सो दिस इज हाउ के हमने एग्जाम्पल ऑलरेडी वहाँ पे देखी. ऑफकोर्स ये एग्जाम्पल बहुत कम है एज कम्पेयर टू इन जर्मनी. जर्मनी इज बिग मार्केट, यहाँ यूनिवर्सिटीज भी डेफिनेटली ज्यादा हैं, तो उस तरह कंपेरिजन नहीं हो सकता. लेकिन येस अगर आपने एडमिशन सिक्योर किया है और यू आर इन सर्च ऑफ ए स्कॉलरशिप, तो नॉट ओनली कि आप फुल फंडेड स्कॉलरशिप के साथ साथ पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप को कंसिडर कर सकते हैं, और अगर आपके पास अपने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो आप डेफिनेटली उनको यूटिलाइज कर सकते हैं. और मैं इस वजह से ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से हमारे स्टूडेंट्स को तो इवन ये भी आइडिया नहीं होता कि स्विट्जरलैंड में भी कोई एजुकेशन के लिए जा सकता है. इवन अच्छा. मैं जब मास्टर में एडमिशन हुआ और मैं एम्बेसी में गया, तो वहाँ मेरे कुछ लोगों से बातचीत चल रही थी जो वहाँ वीज़ा टूरिस्ट वीज़े के लिए आए थे. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप स्विट्जरलैंड जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं. मैंने बताया कि मैं स्टडी वीज़ा यहाँ अप्लाई करने आया हूँ, मैं स्टडी मास्टर के लिए जा रहा हूँ. तो ऑलमोस्ट एवरीबॉडी वॉज सरप्राइज कि स्विट्जरलैंड में भी लोग स्टडी के लिए जाते हैं. एंड दैट वाज स्ट्रेंज, मतलब
बिल्कुल
आइडिया ही नहीं था कि स्विट्जरलैंड में भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे भी इंजीनियरिंग रिसर्च और बहुत कुछ हो रहा है. तो उनका आइडिया होता है जस्ट लाइक यूएसए में लोग जाते हैं, यूके में जाते हैं, या यूरोप में जर्मनी स्वीडन इन जगहों पे जाते हैं, यहीं पे बड़ी यूनिवर्सिटीज है. सो
एक मिनट, थोड़ा सा इको आ रहा है मेरे ख्याल में.
कंटिन्यू करते हैं. मैं ये बोलूँगा कि ETH जो है वो वन ऑफ द टॉप स्कूल्स और वो स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और अच्छे स्कूल्स भी हैं, तो वाई नॉट परसू इन स्विट्जरलैंड. अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है यहाँ पर, शेडी अगर इसको पढ़ दो.
हाँ, तो ये पूछ रहे हैं कि जनरल फी प्लस लिविंग एक्सपेंस आफ्टर मास्टर वर्क परमिट जॉब्स एक्सेट्रा, इन चीज़ों को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें. तो बेसिकली ये पूछना चाह रहे हैं कि जनरल फी क्या होती है. जनरल फी मतलब जो सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन फीस काइंड ऑफ थिंग होती है सेमेस्टर के लिए, और लिविंग एक्सपेंसेस कितने तक होते हैं इन कंपेरिजन, और अगर आप वहाँ से मास्टर्स करते हैं तो वहाँ जॉब सर्च वीज़ा या वर्क परमिट मिलना कि कितने अरसे तक आप जॉब सर्च कर सकते हैं, इसके क्या चांसेस होते हैं.
सही. अच्छा, ये बिल्कुल हमें इस इन टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए थी. जनरल फी के मैं बारे में बताऊं, इट डिपेंड्स ऑफ कोर्स ऑन द कोर्स जो कि आप अटेंड कर रहे हैं. मेरा जो कोर्स था वो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था और मेरी सेमेस्टर फीस अराउंड 500 स्विस फ्रैंक थी, जो कि इक्वल टू ऑलमोस्ट डॉलर होता है. तो इसके अलावा जो लिविंग कॉस्ट थी, मतलब मैं स्टूडेंट अपार्टमेंट्स में था, तो अराउंड 500 to 600 मैक्सिमम, अगर कोई किसी को नहीं मिल रहा या वो कंसीडर कर सकता है कि वो 700 स्विस फ्रैंक तक इसको कंसीडर कर सकता है. और यही एक बिग मतलब आपकी जब कॉस्ट कैलकुलेशन होती है तो उसका बिग पोर्शन आपका रेंट ही होता है. उसके बाद तो जो मतलब बाकी लिविंग कॉस्ट में आता है, ट्रैवलिंग, डेफिनेटली आप अननेसेसरी ट्रैवलिंग इनिशियली कम रख सकते हैं, और बाकी मतलब आप टोटल कह सकते हैं 300 or 400. सो मैं एक्चुअली मतलब 1000 में बहुत अच्छे से, 1000 स्विस फ्रैंक में पर मंथ बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है, आई वुड से. तो ये डेफिनेटली जर्मनी के स्टैंडर्ड्स की निस्बत मुझे आइडिया है कि ये ज्यादा है. जर्मनी में आप इससे मतलब काफी कम में अच्छे से रह सकते हैं, अपने एजुकेशन को भी सपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह बताया कि बिल्कुल लिविंग कॉस्ट जो है वो स्विट्जरलैंड में ज्यादा है और एजुकेशन फीस कम है. तीसरा पॉइंट क्या था? वर्क परमिट. बिल्कुल, वर्क परमिट जो है वो 6 मंथ का मिलता है आपको अपने स्टडीज कंप्लीट करने के बाद.
सही,
मतलब वो काइंड ऑफ जॉब सर्च वीजा होता है. 6 मंथ
जॉब सर्च वीजा होता है. बिल्कुल, आपको अलाउ होता है कि आप वहां पे जॉब को सर्च कर सकते हैं और जब आपको कोई जॉब मिल जाए जस्ट लाइक इन जर्मनी तो आपका जो वीजा है वो फ्रॉम द स्टूडेंट बेस्ड वीजा वो प्रोफेशनल वीजा दूसरे जॉब वीजा में कन्वर्ट हो जाता है. इसमें मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जितने भी हमारी ऑडियंस यहाँ सुन रही हैं, और ये बेसिकली मुझे ऐसे लगता है कि शायद मुझे इसमें इस डायरेक्शन में थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी, और वो है लैंग्वेजेस का एस्पेक्ट इन स्विट्जरलैंड. क्योंकि हमें समझना होगा कि जर्मनी में एक लैंग्वेज है विच इज जर्मन लैंग्वेज. तो अगर स्टूडेंट हमारे मतलब बिफोर स्टार्टिंग देयर कोर्स या ड्यूरिंग देयर मास्टर 2 ईयर मास्टर प्रोग्राम या इवन आफ्टर जर्मनी में ज्यादा टाइम मिलता है वो जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि उन्हें जर्मनी में जॉब मिल जाए. स्विट्जरलैंड में बेसिकली 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जो उनकी नेशनल लैंग्वेजेस हैं और मुख्तलिफ एरियाज में वो लैंग्वेजेस पढ़ी जाती हैं समझी जाती हैं, जिसमें फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है और इंग्लिश भी है और एक और छोटी सी लैंग्वेज. तो मेन जो उनकी लैंग्वेजेस हैं वो जर्मन और फ्रेंच हैं. तो अगर आप अपनी स्टडी के दौरान कोई एक लैंग्वेज इसमें से सीख लेते हैं इधर फ्रेंच और जर्मन तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको वहाँ पे 6 मंथ में जॉब मिल जाए. क्योंकि होता क्या है कि 6 मंथ आर नॉट इनफ एक्चुअली टू लर्न अ लैंग्वेज, टू लर्न ए फॉरन लैंग्वेज. तो अगर हम ये सोचें कि हम अपनी स्टडी कम्प्लीट करने के बाद लैंग्वेज सीखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे तो आई थिंक देन वी वुड नॉट हैव इनफ टाइम. सो इन तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसका होता है कि वो जितने भी आप स्टूडेंट्स वगैरह वहाँ जाते हैं या वहाँ मतलब उनकी इंटेंशंस है कि हम वहाँ पे स्टडी करेंगे स्विट्जरलैंड में, तो मैं उन्हें ज़रूर कहता हूँ कि आप इसको बिल्कुल एक अपने रेगुलर सेमेस्टर कोर्स की तरह लेके चले कि मैंने एक लैंग्वेज इन 2 सालों में सीखनी है अपने मास्टर. और एट द टाइम के जब आपने स्टार्ट किया है बेहतर तो यह है कि आप पाकिस्तान से बेसिक कोर्सेज करके जाएँ. जब आपका एडमिशन हो गया आपके पास 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम है आप उसमें लैंग्वेज को सीखें और उसके बाद जब आप वहाँ जाएं तो आपकी प्रैक्टिस भी 2 सालों में होती रही और वहाँ पे जो मजीद उनके जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल आपको फ्री में कोर्सेज ऑफर करता है. वहाँ पे आप कोई भी लैंग्वेज सीखें, फ्रेंच सीखें या जर्मन, लेकिन एक लैंग्वेज जब आप सीख लेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी थी तो जब मैंने बहुत ज़्यादा अप्लाई किया, कुछ इंटरव्यूज़ हुए तो उन्होंने कहा कि आपने एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, आपके ग्रेड अच्छे हैं, आपका जो बैचलर में भी अच्छे, आपने रेलिवेंट कोर्सेज पढ़े हैं, आपका इंटरव्यू, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा बैरियर है कि हम आपको कंसिडर नहीं कर सकते. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे लैंग्वेज सीखे बगैर चांस नहीं मिलने वाला, तो लैंग्वेज सीखने के लिए फिर मैं जर्मनी में आ गया. फिर मुझे ये जर्मन सीखना थी.
स्विस जर्मन और यहाँ की जर्मन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है वैसे.
डेफिनेटली बिल्कुल फर्क है. तो इसीलिए आफ्टर लर्निंग जर्मन फ्रॉम जर्मनी तो मैं यही कहोगे रह गया.
अच्छा तो फैजान यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा है. फैजान
बिल्कुल.
अब मैं चाहूंगा कि हम जो है ना पॉडकास्ट को दूसरे टॉपिक की तरफ लेके, क्योंकि हमने काफी डिस्कशन कर ली और काफी जो है वो डिटेल डिस्कशन कर ली, और इसको हम एडवर्टाइज भी इस तरीके से करेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो पूरा स्विस स्कॉलरशिप के ऊपर है. अब जो सेकंड पार्ट है हमारे पॉडकास्ट का, तो उसके अंदर हम बात करेंगे प्रोफेशनल जो आप की जॉब है और उससे रिलेटेड. और जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि रोबोटिक के नाम से जो है वो हमारे लोगों के जो टेक्नोलॉजी वाले उनके उनके कान खड़े हो जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, रोबोट उनके जहन में आता है, ऑटोमेशन, रोबोट भी और ऑटोमेशन से भी, तो रोबोटिक आर्म्स वगैरह या क्या बोलते हैं लाइन फॉलोइंग रोबोट्स या वो रोबोट्स जो आप ह्यूमनॉइड्स हो गए. तो रोबोटिक ऑटोमेशन प्रोसेस, ये चीज इन रोबोट से कितनी अलग है और क्या डिफरेंस है इसके अंदर?
बिल्कुल. ये डेफिनेटली बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, और काफी इवन जब मैं भी किसी को अपनी फील्ड के बारे में बताता हूँ तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे फेस करना होता है वो ऐसा ही मिलता जुलता होता है। तो इसमें जो जिस जिन रोबोटिक्स के बारे में हमने बैचलर में मैंने भी पढ़ा और जिससे हम फेमिलियर हैं, उसमें बहुत सा हार्डवेयर इन्वॉल्व होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है, एम्बेडेड सिस्टम जिसमें, तो ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं और उसी को हम जानते हैं जिस तरह हमने इमेजेस विजुअलाइज करते हैं सीमेंस के या एबीबी के रोबोट्स, रोबोटिक आर्म्स, या जिस तरह आपने एग्जांपल दी बहुत सी मशीन जिनमें बहुत ज़्यादा हार्डवेयर होता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं यहाँ जर्मनी में काम कर रहा हूँ, ये बेसिकली आपको अलाउ करती है टू कन्फिगर काइंड ऑफ द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और professionally we call them the robot, software robot, to integrate the actions of the human interaction within digital system to execute a business process. तो ये होता है कि आपने जो different repetitive nature के business processes होते हैं किसी भी company में, उनको using the existing infrastructure like अपना जो laptops या उसी में using the different टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स, आप रोबोट्स तैयार करते हैं या छोटे से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं जो इन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करते हैं, और इसको हम रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कहते हैं।
अच्छा काशी भाई, मैं आपसे आपको इंटरप्ट करूंगा थोड़ा सा, क्या हम इसकी एनालॉजी चैटबॉट से ले सकते हैं? जैसे कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर चैटबॉट्स होते हैं जो कि आपको हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो एक ऑटोमेटिक चैटबॉट होता है जो कि आपसे कम्युनिकेशन कर रहा था, क्या हम इसकी एनालॉजी से ले सकते हैं?
बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, और ये भी आरपीई की रोबोट आरपीए की ही फील्ड में आता है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की ही, और ये बिल्कुल एक करेक्ट एनालॉजी है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज, क्योंकि इसमें भी डेफिनेटली आप डिजाइनिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं और कोई हार्डवेयर आपको एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं होता।
अच्छा, तो इसको मैं थोड़ा सा, मैंने जो समझा वो एक फैजान की अंडरस्टैंडिंग थी और एक थोड़ा सा मेरा वाला पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने थोड़ा सा इस तरह समझाया कि अगर चैट बॉक्स की अगर एग्जांपल लें तो वो एफएक्यूज को, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस को यूज कर रहा होता है, तो जो एफएक्यूज होते हैं, मतलब आप एक इसमें इस तरह से समझ सकते हैं कि एक डेटा है, एग्जिस्टिंग डेटा है इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो एक्सटेंसिवली रिपीटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा है, और फिर एक मशीन है जो मशीन टोटली कंप्यूटर पे या सॉफ्टवेयर पे बिल्ड हुई भी है, वो जस्ट काइंड मिमिक कर रही है रोबोट को और वो उस डेटा को यूज़ कर रही है और डेली जॉब्स को परफॉर्म कर रही है, तो उसमें कोई फिजिकल रोबोट्स इन्वॉल्व नहीं है।
बिल्कुल, डेफिनेटली कोई फिजिकल इसमें रोबोट नहीं है जिसको आप, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जस्ट लाइक रोबोटिक आपके आप उसको पकड़ सके, टेस्ट कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट यू हैव एट द एंड, आपके पास एक टूल होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा और उसी के ऊपर ये रोबोट एग्जीक्यूट हो रहा होगा, जस्ट लाइक चैटबॉट आप उसको रन कर देते हैं और उसके बाद इट विल वर्क।
एग्जैक्टली, तो उम्मीद है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो कन्वे हो गई होगी, तो अब थोड़े से एडवांस लेवल पे जाते हैं इसको, और खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे टेक्निकल, लेकिन हम इसको तरीके से देखेंगे कि स्कोप के हिसाब से कि अभी इस वक्त आपको, मतलब वो क्या, आपको क्यों, आपने क्यों परसू किया आरपीए को, और इसका क्या स्कोप आप देखते हैं अगले 5-10 साल में यूरोप में, और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं पाकिस्तान में?
बिल्कुल, मैं बेसिकली चूंकि यहाँ पे डेफिनेटली जो ऑडियंस है वो सोच रही होगी कि मैंने एनर्जी के बारे में बात की, कि एनर्जी के हवाले से मैंने अपना मास्टर प्रोग्राम किया और फिर आरपीए, ये थोड़ा सा कंट्रास्टिंग चीज़ें लग रही हैं। तो मैं बेसिकली एनर्जी अपना मास्टर कंप्लीट करके एसएपी की फील्ड में आया था, जिसमें मैं एनर्जी के हवाले से डिफरेंट चीज़ों की डिज़ाइनिंग, एसएपी एक सॉफ्टवेयर है उसमें कर रहा था। तो आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ माय वर्क इन दिस फील्ड, तो रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एकदम लेट से बिफोर 3-4 ईयर्स इमर्ज होना शुरू हुई, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो यूरोप में काफ़ी फैल गई, बहुत ज़्यादा हो गई, और बहुत सी ऐसी डिमांड यूरोपीय इंडस्ट्री की तरफ से आना शुरू हो गई जिसमें वो बहुत इंटरेस्टेड थे कि अपने बहुत से प्रोसेसेस को वो यूजिंग द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजी ऑटोमेट करें। रीज़न इज़ वेरी क्लियर कि इसमें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी बात की, किसी किस्म के एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं थी, और जस्ट लाइक यूजिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंतहाई एफिशिएंट आप अपने रिपोर्ट्स को बना सकते थे. तो मुझे ये टास्क बेसिकली कंपनी की तरफ से फिर दिया गया कि जिन SAP प्रोसेस पे मैं काम कर रहा हूँ वो काफ़ी रेपिटेटिव नेचर के हैं, और इसके अलावा और कुछ दूसरे जो डिपार्टमेंट्स में काम है फाइनेंशियल के हवाले से या इवन HR के हवाले से या दूसरे, वो रेपिटेटिव या इवन मैनेजेरियल जो टास्क है, फॉर एग्जांपल कि उन्हें अपनी मैनेजर्स को पर्टिकुलर ईमेल डेली चेक करनी पड़ती है या अटैचमेंट्स को कहीं सेव करना होता है या उसमें एक पर्टिकुलर डाटा डेली बेसिस पे उन्हें एक्सट्रैक्ट करके अपने सीनियर मैनेजर को सेंड करना होता है. तो ना सिर्फ ये कि एनर्जी की फील्ड के हवाले से और SAP के हवाले से जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा था, दूसरे जितने भी डिफरेंट फील्ड्स हैं उनमें इन प्रोसेसेस को टास्क दिया गया कि हमने इनको ऑटोमेट करना है ताकि हम अपने प्रोसेसेस को एफिशिएंट बना सकें. तो स्टार्ट तो हमने अपने एनर्जी के बैकग्राउंड के हवाले से SAP से लिया, उनके प्रोसेसेस को हमने इस टेक्नोलॉजी की मदद से ऑटोमेट किया, और फिर चूंकि मैं कंसल्टिंग कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ जब किसी दूसरी फील्ड से भी आपको आती है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता है तो सारे आपको करना होता है. तो इस तरह मैं फिर इस तरह स्विच कर गया और मैंने इसमें डीपली डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स किए.
वैसे यहाँ मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने SAP का मेंशन किया तो वैसे तो पाकिस्तान में भी अब काफ़ी इसका बूम है, काफ़ी लोग कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अगर आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये SAP इसका क्या रोल था बीच में, मतलब ये चीज़ क्या है.
SAP जो है ये एक जर्मन बेस्ड ही काफ़ी सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत यहाँ पे पॉपुलर है और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है. मैं जो इसको यूज़ करता हूँ किया मैंने वो एनर्जी के हवाले से था, जितना भी रीन्यूएबल एनर्जी सिस्टम सोलर प्लांट्स थे या हमारे विंड एनर्जी के प्लांट्स थे या इवन दूसरी जितनी भी एनर्जीज थी उनकी डिज़ाइनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते थे, उनकी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते थे. एनर्जी मार्केट जस्ट लाइक द स्टॉक मार्केट इस तरह हम बहुत वाइड स्प्रेड है वर्ल्ड वाइड और दुनिया पाकिस्तान में भी, तो यहाँ पे एनर्जी मार्केट भी उसी तरह है जिसमें उसे कहते हैं उसी तरह एनर्जी की ट्रेडिंग हो रही होती है. इसको हम SAP सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा मॉनिटर करते थे और उसकी कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे होते थे. तो ये SAP को हमने जो मैंने यूज़ किया वो इस हवाले से यूज़ किया. अदरवाइज इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो क्रॉस इंडस्ट्री है, अक्रॉस द इंडस्ट्री. इसमें HR इवन आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक्स आ जाते हैं और बहुत सी दूसरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री को उन्होंने कवर किया हुआ है.
अच्छा. सही. तो मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूँगा कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि RPA और SAP स्टिल पाकिस्तान में काफ़ी अनटच्ड मार्केट है, और वो क्या तरीक़ाकार हैं जिससे हम पाकिस्तान में इसको जो है वो ला सकते हैं, और जो यंग ग्रेजुएट्स हैं हमारे जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं वो क्या कोर्सेज करें, और मुझे आपका भी एक आपने बताया था कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में भी हमें बताएं कि लोग इसको क्यों सीखें और इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए.
यहाँ मैं आपकी तरफ काशिफ भाई आने से पहले फैज़ान के क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा और ऐड कर दूं अगर आप बुरा ना माने तो
क्योंकि वो क्वेश्चन भूल जाऊंगा लेकिन मैं पूछ
लूंगा. नहीं, असल में मैं यहाँ थोड़ा सा ना फैज़ान ने जैसे एक ये पॉइंट मेंशन किया ना कि जैसे यूथ किस तरह इस चीज़ को अक्वायर कर सकती है, तो यहाँ पे अगर छोटी सी डिटेल में अगर हमें पता लग जाए कि ये जो RPA है इसका ब्लॉक डायग्राम किस तरह से है, मतलब इसके कोई ना कोई कॉम्पोनेंट जो है मेजर कॉम्पोनेंट, जैसे इसमें आपको क्लाउड यूज करना पड़ता है, तो इस तरह के कंपोनेंट्स जिसमें हमारे जो यूथ है ना ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके कि बेसिकली अगर वो पाकिस्तान में करना चाह रही है तो उसको किन कंपोनेंट्स की जरूरत है.
बिल्कुल सही है. चलिए मैं पहले शेरी आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ और उसके बाद फिर मैं उससे कनेक्ट कर दूंगा फैजान का क्वेश्चन और एक सीक्वेंस अच्छा हो जाएगा.
मैं नाराज हो जाऊंगा.
आप चलें अच्छा तो इसमें जो आपने बात की कंपोनेंट्स की, तो मैं उसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आप टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं कि रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजी है जो हम यूज़ कर सकते हैं या पाकिस्तान में लोग सीख सकते हैं. तो तो एक बहुत थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, इवन पाकिस्तान में भी वो वाइड स्प्रेड है, बहुत से लोग आई नो कि वो यूज कर रहे हैं, विच इज ब्लू प्रिज्म ऑलरेडी इन प्लेस. इसके अलावा जो रिसेंटली टेक्नोलॉजी है और जिनका लेट्स से कि यूरोप में काफ़ी डिमांड है, उनमें ऑटोमेशन एनीवेयर है और एक यूआई पाथ है. तो मैं जो मैंने जिस टेक्नोलॉजी से स्टार्ट लिया और जिसमें मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए, वो यूआई पाथ टेक्नोलॉजी है और वेरी सोफिस्टिकेटेड. और इसमें इसका सबसे जो अच्छा पॉइंट है वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स इसका कम्युनिटी एडिशन यानी कि एक फ्री एडिशन अवेलेबल है, वो अनलिमिटेड उसको यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो उसकी मदद से उसमें ऑलमोस्ट हर तरह के फीचर्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग दी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और इसके अलावा इमेज रिकग्निशन के जो डेटा एक्सट्रैक्शन के जो एडवांस टूल्स हैं वो भी इसमें अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं इस टेक्नोलॉजी में. और इनकी मदद से वो बहुत कुछ एक ही टूल में रहते हुए सीख सकते हैं और प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, नॉट ओनली ऑन फ्रीलांसिंग या अगर वो किसी कंपनी में आते हैं. और इसके स्कोप के बारे में फैजान आपने बात की, तो इवन पाकिस्तान में भी डेफिनेटली ब्लू प्रिज्म की जिस तरह मैंने बात की कि बहुत से आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है, बहुत से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ से आउटसोर्स होते हैं और पाकिस्तानी कंपनीज उनको एक्वायर करके आगे से यंग जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे करवा रहे होते हैं, तो वो इन टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली उसका अभी उतना इन नई टेक्नोलॉजी जैसे यूआई पाथ या ऑटोमेशन एनीवेयर का भी उतनी इंफॉर्मेशन शायद नहीं है कि जितनी ब्लू प्रिज्म की है. तो मैं उन स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली एड्रेस करना चाहूँगा जो यूरोप में स्टडी के लिए आ रहे हैं या इवन वो ऑलरेडी जर्मनी या किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं और वो जॉब सर्च करना चाह रहे हैं. तो वो सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हमें जॉब नहीं मिल रही या किस तरफ जाएं. तो अगर वो इस टेक्नोलॉजी को सीख सकें, इट्स नॉट डिफिकल्ट, अगर वो 3 महीने दें तो आई एम श्योर कि वो इसको सफिशेंट नॉलेज इसका गेन कर सकते हैं. और यूआई पाथ की उसे कहते हैं अपनी वेबसाइट पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत से लोगों के ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, इसके अलावा आप यूडीमी या डिफरेंट दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट कोर्सेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनको उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो इनसे सेल्फ लर्निंग मूड में आप इसको सीख के यूरोप में आसानी के साथ आई गेस के इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं.
सही, तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो हमें दे दीजिएगा कि जिन लोगों ने या जिन स्टूडेंट ने आपसे कंसल्टेशन लेनी है खास तौर पे आरपीए से रिलेटेड, तो वो आपको कनेक्ट कर सकें. सही,
बिल्कुल, डेफिनेटली मैं इसमें आपको मैसेज कर दूंगा, तो आप जैसे भी अपने स्टूडेंट्स को या अपने ऑडियंस को कम्युनिकेट करना चाहें तो आप
कर सकते. मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो डाल दूंगा और हमारी जो ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा. शेरी, मेरे ख्याल से इसको अब कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं, तुम्हारे अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो.
मेरे बस क्विकली कुछ क्वेश्चंस मेरे पास जब हमने इसका पोस्टर अपलोड किया था तो क्विकली कुछ क्वेश्चंस आए थे, मैं उनको कंक्लूसिव वे में पूछूंगा आपसे. पहली चीज़ तो ये कि मेरे ख्याल में वो शायद पॉइंट इतना अनाउंस वेल अनाउंस नहीं किया कि आपकी भी एक आप भी कंसल्टेशन कोर्सेज कर देते हैं, मतलब प्रोवाइड करते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ऐड कर दीगा. एक चीज़ तो वो थी. दूसरा ये कि एक क्वेश्चन बेसिक वही मेरे ख्याल में ये कवर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मुझसे पूछा था एक स्टूडेंट ने कि वो सिक्स या सेवन सेमेस्टर का स्टूडेंट है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा है अपनी डिग्री, तो वो आरपीए को किस तरह से देख सकता है और उसको मतलब मेनली किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए बैचलर्स लेवल पे ही, कि वो अपना बैचलर थीसिस है या बैचलर्स प्रोजेक्ट है वो आरपीए में कर सके. और एक लास्ट क्वेश्चन यही था कि यूआई पाथ, जैसे आपने ब्लू प्रिज्म की बात की, तो अगर मैं यूआई पाथ वर्सेस ब्लू प्रिज्म की बात करूँ तो मैं किस सॉफ्टवेयर की तरफ जाना पसंद करूँगा, मतलब एक ओपन फीचर्स क्या हैं जो बेहतर हो सकता है इन कंपैरिजन.
सही, अच्छा मैं वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो मैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे करता हूँ, फीवर या अपवर्क दूसरा हो गया, तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को जो सीखना चाहें वहाँ मैं ट्रेनिंग देता हूँ. या इसके अलावा पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं या इंडस्ट्रियल फॉर एग्जांपल हवाले से अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो कॉन्टेक्ट करते हैं, या इवन जर्मनी में चूंकि मैं वर्कशॉप्स वगैरह यहाँ करवाता रहता हूँ तो इस तरह मैं इसकी ट्रेनिंग करता हूँ। मेनली जो स्टूडेंट्स, अगर कोई मतलब ना सिर्फ कि मैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं मतलब यूरोपियन भी जो सीखना चाहते हैं या जो सीखते हैं तो वो मुझे इन्हीं मीडियम पे मेनली कॉन्टेक्ट करते हैं। जो सेकंड आपने स्टूडेंट की बात की कि अगर वो सीखना चाहता है उसको एट दी ड्यूरिंग द बैचलर एजुकेशन बैचलर प्रोग्राम, तो जिस तरह मैंने पहले मेंशन किया कि डेफिनेटली वो यूआई पाथ को फॉर एग्जांपल उनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है, उसका कम्युनिटी या फ्री एडिशन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा इसका बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट गूगल पे इन द फॉर्म ऑफ द फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है। इसके अलावा डिफरेंट मतलब कोर्सेज वो डाउनलोड कर सकता है, यूट्यूब पे बहुत से लोगों के एग्जांपल वीडियोस अवेलेबल हैं जो जहां से वो सेल्फ इन चीज़ों को सीख सकता है। और ऐसे स्टूडेंट जो फॉर एग्जांपल इसको सीख लेते हैं साथ साथ और वो इस की फील्ड में ही कोई मास्टर कोई अपना बैचलर प्रोग्राम कर बैचलर थीसिस फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं या कर लेते हैं, तो आई थिंक कि इवन रिसेंटली आई फॉरगेट के कौन सी यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में इस डायरेक्शन में मास्टर इवन प्रोग्राम डिज़ाइन हो रहे थे और वो इस टेक्नोलॉजी को अब यूनिवर्सिटी लेवल में इंटीग्रेट कर रहे थे कि ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उस अपनी एजुकेशन के दौरान ही ये प्रोग्राम ये टेक्नोलॉजी सीख सके, उन्हें बाद में इंडस्ट्री में जाके ये ना सीखना पड़े और वो रेडी हों इन इस टेक्नोलॉजी में जॉब्स हासिल करने के लिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन था कि
कंपैरिजन बिटवीन
कंपैरिजन क्या है। ब्लू प्रिज्म में मैंने ऑनेस्टली अभी इतना काम नहीं किया, लेकिन जो यूआई पाथ के हवाले से मैं बात कर सकता हूँ कि इसमें जो व्हाई इट्स सो पॉपुलर इन यूरोपियन मार्केट, तो उसकी वजह यही है कि इसमें जो नए अप टू डेट और टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें मशीन लर्निंग है, जिसमें कंप्यूटर विजन या इमेज रिकग्निशन के जो एडवांस्ड तरीके हैं फीचर्स हैं वो इसमें इंटीग्रेट किए हैं, और ये यूआई पाथ चूँकि और ये इसको अपडेट करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करते रहते हैं, तो इस वजह से इन कैपेबिलिटीज़ की वजह से ये काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। और ख़ास तौर पे जो चीज़ होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन की इन टूल्स के हवाले से कि इनमें डेटा जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग और रिलायबल होती जा रही है। फॉर एग्जांपल आप बहुत से स्कैंड डॉक्यूमेंट से या पीडीएफ से भी आप इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जो कि पहले शायद इतना रिलायबल या क्वालिटी के हवाले से उतना रिलायबल और एक्यूरेट नहीं होता था, विच इज़ नाउ पॉसिबल थ्रू ऑफकोर्स मशीन लर्निंग या कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजीज। तो इस वजह से यू आई पाथ की तरफ मार्क यहाँ पे यूरोप में काफ़ी, इवन मैं इतनी देर से यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो मैं यू आई पाथ और ऑटोमेशन एनी वेयर का ही सुनता हूँ, हार्डली मैंने किसी कंपनी की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट आया हो और उन्होंने मुझे या हमारी कंपनी को ऑफर किया हो कि आप ब्लू प्रिज्म में भी काम कर सकते हैं। सो मेनली दे फोकस ऑन यू आई पाथ और ऑटोमेशन एनी वेयर। सो इससे आप देख सकते हैं कि इस इन टेक्नोलॉजी की एज कम्पेयर टू ब्लू प्रिज्म ज़्यादा डिमांड है।
सही, तो शेरी फिर इसको कंक्लूड करते हैं अपने पॉडकास्ट को, और मैं एंड में ये रिक्वेस्ट करूंगा काशिफ भाई से कि आपका अभी तक जो भी एक्सपीरियंस है अगर आप उसको दो लाइन में सम अप करें और कोई सजेशन देना चाहें यंग ग्रेजुएट्स को
रिगार्डिंग द जॉब एंड एजुकेशन
बट व्हाटएवर यू लर्न, लाइक जो भी आपने अभी तक सीखा जो आपकी लर्निंग थी उसके हिसाब से कोई एक मोटिवेशनल आपने कोई सेंटेंस देना हो उनको के
कंट्री में आए हैं इधर जर्मनी में है या अगर आप स्विट्जरलैंड में मोटिवेशन आपको मिली है और अगर आप स्विट्जरलैंड में जाना चाह रहे हैं तो आप एजुकेशन के साथ साथ जो लैंग्वेज है उसको एज अ सेमेस्टर कोर्स की तरह देखें और उसको हर सेमेस्टर में एक लेवल को कंप्लीट करने का अपना टारगेट रखें ताकि आपने एक लेवल को कंप्लीट करना है, अगर आपके मास्टर प्रोग्राम में लेट्स से 4 सेमेस्टर हैं तो आप हर सेमेस्टर में जब 4 लेवल को कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ योर मास्टर प्रोग्राम तो आप उस लैंग्वेज पे काफ़ी हद तक अबूर हासिल कर लेंगे। और आप इससे क्या होगा, इससे आप किसी भी मार्केट में होंगे तो जॉब हासिल करने में आपको बहुत सहूलत होगी, बहुत ज़्यादा सहूलत होगी, क्योंकि अभी भी बहुत से जर्मनी में इवन स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं और उनकी सीवीज और उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छे मार्क्स ग्रेड्स होते हैं, टेक्निकली साउंड होते हैं, बट दे आर लैकिंग इन द जर्मन लैंग्वेज। सो लैंग्वेज स्किल्स के ना होने की वजह से वो सफ़र कर रहे होते हैं और वो मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिल रही होती। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि वो, और इसी तरफ मोटिवेशन दूंगा स्टूडेंट्स को कि वो लैंग्वेज पे अपने अपने एजुकेशन मास्टर या पीएचडी एजुकेशन के साथ साथ लैंग्वेज पे भी फोकस करें।
सही, रोशनी कुछ ऐड करना चाहोगे?
मैं आज बस यही ऐड करना चाहूँगा, जो एक मतलब मेरी तरफ से जो आज की पॉडकास्ट के लिए मैसेज होगा सबके लिए वो ये होगा कि इस वक्त हमारी खास करके पाकिस्तान में यूथ, हर दूसरे बंदे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और उसको किसी ना किसी तरीके से एआई या मशीन लर्निंग की एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है, मतलब उसमें एक एज अ काइंड ऑफ बैचलर्स डिग्री करनी है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि इस वक्त जो दुनिया चल रही है उसमें हर फील्ड में एआई और मशीन लर्निंग का यूज़ है, लेकिन इस चीज़ को इस तरह से देखो कि यार जिस फील्ड में तुम बात कर रहे हो उस फील्ड में कभी भी वो किसी ऐसे बंदे को जॉब नहीं देते जो सिर्फ एआई का एक्सपर्ट हो, वो उस बंदे को जॉब देते हैं जो वो उस फिज़िकल टेक्निकल फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसके बाद उस फिज़िकल टेक्निकल फील्ड के साथ एक एआई का स्किल सेट जनरेट करे अपने लिए, फिर उसको जॉब मिलती है। अगर तुम सिर्फ एआई या मशीन लर्निंग या डेटा इंजीनियरिंग करके बैठ जाओगे तो तुम्हारी स्पेसिफिकेशंस फिर बहुत डिफरेंट जगह हैं, तुम्हारी स्पेसिफिकेशन इंडस्ट्री में उस तरह नहीं है कि तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर की जगह जॉब कर सको। तो अब की रिक्वायरमेंट ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो, उसके साथ एआई का स्किल सेट अक्वायर करो और उसके बाद इंडस्ट्री में जाओ। तो मेरी तरफ से तो आज का मैसेज यही था जो मैंने मेजॉरिटी टाइम समझा आज की पॉडकास्ट में।
सही, मैं शेरी की बात से जो है वो बिल्कुल एग्री करूँगा कि इसको एज ए स्किल सेट जो है वो, जैसे आप क्या बोलते हैं मैथ की टॉपिक्स सीखते हैं, मैथमेटिक्स के, स्टेटिस्टिक्स के, तो वो मशीन लर्निंग ही है, और उसको सीखें और अपने जो आपकी जॉब है उससे रिलेटेड जो है वो अप्लाई करें। मैं जो इसके अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐड करना चाहूँगा वो ये कि काफ़ी ओपन मार्केट है पाकिस्तान में इस वक्त, कोई अगर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के हिसाब से सोचना चाहता है तो वो कंसल्टेंट इसको सीख के कंसल्टेशन फॉर्म भी खोल सकता है और इस चीज़ को एक्सप्लोर करें जो लोग भी सुन रहे हैं। होपफुली आप लोगों को जो है वो काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस हों तो आप काशिफ भाई से या हम लोगों से किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक यू सो मच काशिफ भाई फॉर अप्रोचिंग अस, एंड फिर आपने ज्वाइन भी किया हमें, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग हमारे साथ मिलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और लोगों को पता चलता जा रहा है टेक लॉग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड या और इसको यहीं पर कंक्लूड करते हैं। दिस इज द शॉर्ट स्टोरी, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।
थैंक यू फिजान एंड शरी, थैंक यू, इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू गाइस।
बाय
बाय बाय।